शांति, बाप दादा की दिल तख्त नशीन अमूल्य रत्न राजयोगिनी आदरणीय ब्रह्म कुमारी डॉक्टर निरंजना बहन हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो। आपने इस राजयोग का अभ्यास 42 वर्षों से किया है और 40 वर्षों से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। जैसा ही आपका नाम है वैसी ही आपकी विशेषता भी है। आपकी रूहानी दृष्टि, मधुर मुस्कान, वो हर एक के दिल को जीत लेती है। ज्ञान का मनन चिंतन करके उसकी गहराई में जाना, मुश्किल बात को सहज कर देना, ये आपकी विशेषता रही है। साथ ही साथ आप यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी आत्मा है। तो आज का जो हमारा विषय है, योग में लवलीन स्थिति की विधि क्या हो सकती है, वो आप हमें मार्गदर्शन करेगी। तो आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निरंजना बहन से हम सुनेंगे। ओम शांति।
बाबा के बेहद घर के अंदर बहुत 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 स्वागत है। आप सभी को मन के अंदर ये उमंग, ये उल्लास, ये खुशी अतीन्द्रिय सुख की महसूसता हो रही होंगी कि हम किसके घर में आए हैं। किसके घर में आए हैं? बाबा के घर में आए हैं। और हम बड़ा सरलता से, स्वाभाविक रूप से बाबा को, श्री बाबा को जानते हैं, मानते हैं, याद करते हैं, इसलिए समझते हैं हम बाबा के घर में आए हैं। और दुनिया अगर पूछेंगी तो क्या कहेंगे, किसके घर में आए हैं? भगवान के घर में आए हैं। किसके घर में आए हैं? भगवान के घर में आए हैं। और अपने नशे को और पक्का करने की बात है कि भगवान अर्थात कि जो समग्र विश्व का नियंता है, सर्वशक्तिमान है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। आप सोचिए, सारे विश्व का जो भाग्य विधाता है और हम उनके घर में आए हैं। किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? हाँ, उनसे रूबरू होने के लिए। किस लिए? उनसे रूबरू। अगर हम किसी को कहे कि हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं तो किसी को ये बात सच्ची लगेगी नहीं। लगनी चाहिए वास्तव में, परंतु आज के समय अनुसार अभी तक तो ऐसा लगेगा नहीं कि अच्छा आप भगवान से मिलने जा रहे हैं। उनको आश्चर्य लगेगा, ये पागल है, भगवान कभी मिलता है क्या किसी को? मिलता है। वो सोचते हैं कि भगवान, आपको भगवान मिल गया, आश्चर्य लगेगा। और हम कहते खाली मिला नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग में तो ऐसा सोचते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, झांकी हो जाए, झांकी झांखा झांखा दिखाई पड़े। झांकी किसको कहा जाता है? जो झांखा झांखा दिखाई पड़ता है, खाली आकार दिखाई पड़ता है थोड़ा थोड़ा प्रकाश का, वो भी देवी देवताओं को ही पड़ता होगा, तो भी साक्षात्कार जिसको कहते हैं, तो भी लोग खुश हो जाते हैं। जिनको होता है वो खुश होते हैं खुद, पर जिनको होता है उसको देख करके लोग और उनकी ही पूजा करने लग पड़ते हैं। इतना महत्व केवल साक्षात्कार का है। और हम क्या कहते हैं, हमें बाबा केवल दर्शन देने नहीं आता है, साक्षात्कार कराने नहीं आता है। किस लिए आता है? पढ़ाने के लिए आता है ना। और ये कोई सुने कि भगवान इनको रोज पढ़ाता है तो कहीं इनको कोई काम ही नहीं था, और खाली तुम्हारे पीछे ही इनको टाइम देना था, जो रोज पढ़ाने आता है। आप सोचिए, भगवान हमको रोज पढ़ाने आता है, ये अगर कोई सुने तो उनको समझ नहीं आएगा, और हम सोचे तो हमको लगेगा कि हम आत्माएं कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, अथवा हम आत्माएं कितनी लायक आत्माएं हैं, उम्मीदवार, जिसको बाबा कहते हैं उम्मीदवार बच्चे, लायक आत्माएं, किसको सुने, कौन सुन सकता है, भगवान से कौन मिल सकता है, कौन सुन सकता है, कोई कॉमन व्यक्ति नहीं सुन सकता है ना। जो बाबा कहते कोटो में कोई और कोई में भी कोई आत्मा, आप देखिए आज कितनी आत्माएं हैं, सारे विश्व में आत्माएं कितनी हैं और बाबा के बच्चे कितने हैं, कोटो में कोई, तो ये कौन सी आत्माएं हैं। आप सभी, जो बाबा कहते हैं कि मेरा लास्ट बच्चा भी, लास्ट से लास्ट बच्चा किसको कहा जाएगा, कि जो लास्ट में आया है, अथवा उनकी मनोस्थिति में लास्ट से लास्ट है, चलो, पर जिन्होंने बाबा कहा है, बाबा को पहचाना है, बाबा को मेरा कहा है और पवित्र जीवन जी रहा है, वो ऐसा कोई भी बाबा का बच्चा होगा, बाबा कहते दुनिया से वो सबसे ऊंचा है, मेरा लास्ट लास्ट बच्चा भी दुनिया के सबसे फर्स्ट फर्स्ट है। आप सोचिए कितना एक एक आत्मा का महत्व है, और बाबा को पहचानने वाली जो आत्माएं हैं, बाबा को मेरा कहने वाली जो आत्माएं हैं, वो बाबा के तो वही है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, प्यार से जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बहुत पुण्य कर्म किया हुआ है, जन्मों जन्म से जिन्हों का भाग्य ऐसा बना हुआ है, वही इस जन्म में भगवान को पा सकते हैं। और बाबा हमें आकर के अभी रोज 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 पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई आप सोचिए कि एक तो भगवान स्वयं पढ़ाते हैं और रोज पढ़ाते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, जरूर इस पढ़ाई में कुछ वजूद है, जरूर इस पढ़ाई में इतनी कठिनाई होगी, नहीं तो भगवान तो आशीर्वाद करे तो ही बहुत हो गया, नहीं, पर ये सब भक्ति की मान्यताएं हैं। बाबा के ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बाबा हमें यथार्थ और स्पष्ट ज्ञान समझाते हैं, और इसीलिए बाबा रोज पढ़ाते हैं कि बाबा जो पढ़ाते हैं, जो कहते हैं, वो रोज कहते हैं, रोज समझाते हैं, रोज पढ़ाते हैं, सालों साल हो गए हैं तो भी हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे आज विषय दिया है, विषय भी बड़ा हायर कैटेगरी का दिया हुआ है, क्या कहा है, निरंतर लवलीन स्थिति में रहने की विधि, निरंतर लवलीन अर्थात, खाली सोचिए तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि निरंतर लवलीन, आप सोचिए कि निरंतर हम बाबा की याद के अंदर, बाबा की याद समझ सकते हो ना, बाबा की याद, बाबा की याद अर्थात कैसी याद, जब हम याद शब्द बोलते हैं तो उसका हमेशा मीनिंग क्या होता है, याद अर्थात क्या, याद, फिर बाबा को यथार्थ याद कहते हैं, वो तो बाबा स्पष्ट करते हैं, परंतु याद शब्द हम बाबा के याद में हो इसका मतलब क्या, मतलब क्या बताइए, क्या मतलब, याद जब हम कहते हैं याद, अथवा बाबा कहते हैं याद, तो मतलब कि आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए हमारी बुद्धि परम धाम में निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ लगी हुई हो। अब सोचिए याद का अर्थ क्या है ना, याद में हो इसका अर्थ मैं आत्म स्थिति में स्थित होते हुए स्वयं को आत्मनिश्चय करते हुए शिव बाबा की याद में प्यार से है ना। अब सोचिए तो ये याद, इसको कहते याद, स्वयं को आत्मनिश्चय, मैं कौन हूँ, कौन हूँ बोलने की जरूरत है, वो खबर पता है सबको, खबर है पता है, परंतु महसूस करने की बात कि मैं कौन हूँ, महसूस कीजिए मैं कौन हूँ अंदर में, है ना। आत्मा बोलने में नहीं है, आत्मा महसूस करने में है कि मैं ब्रह्मकुटी के बीच विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप मैं आत्मा। और मेरी बुद्धि में कौन है? बुद्धि कहाँ लग पाओगे? लटकी हुई होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? लटकी हुई कहाँ? परमधाम में। तो एक याद शब्द का अर्थ ये है कि मैं आत्मा शिव बाबा की, शिव बाबा के साथ मेरा संकल्प जुटा हुआ है, मेरा विचार है ना। याद अर्थात मेरा विचारों में, मेरी याद में कौन है? बाबा कहते तुम मुझे, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मेरे वतन में याद कर, यथार्थ याद उसको कहा जाता है। तो मैं आत्मा हूँ और मैं शिव बाबा को परमधाम में ज्योति बिंदु स्वरूप में याद करती, तो इसको कहते याद। और ये संकल्प मेरा निरंतर रहे, आप देखिए कितनी अच्छी अवस्था होंगी। निरंतर शब्द, निरंतर का अर्थ है चलो 24 आवर्स को छोड़ दो, तो कोई भी आधा घंटा सिलेक्ट कर लो, कोई भी आधा घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए सिलेक्ट कर लो और सोचो कि ये आधे घंटे में मुझे निरंतर याद में रहना है। क्या आधा घंटा भी नक्की कर लो, चलो आधा घंटा ज्यादा लगता है आपको, घड़ी में देख करके 10 मिनट का भी ये प्रयोग है, ट्रायल है, 10 मिनट नक्की करो ये 10 मिनट निरंतर याद। फिर सोचो अपने आप को कि हम 10 मिनट निरंतर याद में रह सकते हैं। निरंतर अर्थात कांस्टेंट, मैं आत्मा और शिव बाबा की याद में, वहां बाबा के सामने अपने आप को महसूस करने का, बाबा के सन्मुख महसूस करने का, मैं आत्मा और बाबा, बाबा भी बिंदु मैं भी बिंदु, मैं बिंदु परमधाम में बाबा बिंदु के सामने हूँ, ये मनोस्थिति है। और ये मनोस्थिति हमारी निरंतर रहे, प्यार आप ही आएगा, लव लीन। तो अगर हम ये इसमें आते हैं, इस स्थिति में मन को स्थित करते हैं, तो क्योंकि वो क्या है, प्यार का सागर है, और सागर में आप, सागर में अंदर चले जाओ तो आपका कुछ रहेगा? लीन के सिवाय कुछ नहीं रहेगा, है ना। प्यार के सागर में अगर आप चले गए तो लीन शब्द भी उड़ जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा, अनुभूति में आप स्थित हो जाएंगे। ये है स्थिति, निरंतर लवलीन स्थिति। अब निरंतर लवलीन स्थिति प्राप्त करने के लिए विधि क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा के ज्ञान का महत्व इसलिए है कि बाबा हमें हर बात की विधि बताते हैं। भक्ति मार्ग में हम पूजा करते थे, लक्ष्मी नारायण की पूजा किया, राम सीता की पूजा किया, श्री कृष्ण का जबरदस्त वर्णन सुना, शिव बाबा की बहुत महिमा है वो सुनी, महिमा है, दर्शन करो, पूजा करो, परंतु वो कैसे बने वो तो कोई सोचता ही नहीं। अब बाबा हमें हर बात बताते हैं और फिर उसकी विधि बताते हैं। तो निरंतर लवलीन स्थिति वो पुरुषार्थ नहीं है, वो प्रारब्ध है। निरंतर लवलीन स्थिति पुरुषार्थ नहीं है, क्या है? प्रारब्ध है, वो हो जाती है। पुरुषार्थ क्या है वो हमें आज सोचना है, चर्चा करना है। तो सबसे पहली बात है, पहला है ज्ञान। जैसे आपको कहा कि ये स्थिति है क्या, उसका ज्ञान। जितना हमें इस बात का ज्ञान होगा, जैसे पहले कहा कि निरंतर, पहले तो याद की स्थिति क्या है वो खाली शब्दों में नहीं, हम शब्दों से तो बहुत होशियार हो गए भाई, हर एक को अभी आप सब बैठे हैं उसमें से किसी को भी कह दो कि योग क्या है तो आप लेक्चर दे सकते हैं, है ना। ज्ञान अर्थात शब्दों के ज्ञान की बात नहीं है, अंदर की महसूसता का ज्ञान, महसूसता कि मैं आत्मा हूँ, मैं कहती हूँ तो इसका मतलब क्या है मेरे लिए, वो मुझे ज्ञान हो। बाबा को हम कहते बाबा परमधाम निवासी है, तो परमधाम का मुझे महसूसता के रूप में ज्ञान हो। परमधाम क्या है आपके मन में आया है? परमधाम कभी जिसने अनुभव किया है परमधाम का हाथ ऊपर करे। अच्छी बात है। तो इस बात का ज्ञान चाहिए, जितना आप ज्ञान अंदर होगा तो आप उसके नजदीक जा सकते हैं। हमारा पुरुषार्थ रूहानी है, रूह का अर्थ ही है सोच अर्थात ज्ञान। जितना आप सोच में डीप जाते हैं उतना ही आप उसकी महसूसता कर सकते हैं। तो परमधाम जो बाबा कहते ही है, खैर आप सबको ज्ञान के रूप से तो पता है, परमधाम अर्थात कैसा है? परमधाम स्वयं प्रकाशित है, हम कहते हैं स्वयं प्रकाशित है ना, गोल्डन रेड कलर का स्वयं प्रकाशित तत्व है, ये स्वयं प्रकाशित तत्व है। तो आप सोच सकते हैं हम आत्माएं वहां की ही रहने वाली है, परंतु फिर भी अभी भूल गए हैं, इसलिए फिर से उसको मन में लाने का, तो हमें ज्ञान हो। एक पहली बात वो स्वयं प्रकाशित गोल्डन रेड कलर का है ना, सुनहरे लाल रंग का स्वयं प्रकाशित तत्व है। सोचिए बाबा कहते हैं वो सूक्ष्म तत्व मूल तत्व है। वो कैसा है? मूल तत्व अर्थात जहां कोई आवाज कभी हुआ नहीं है। कैन इमेजिन, अभी कोई जंगल में कोई हम जाए कोई जंगल में जहां कोई रहता ना हो तो भी हमें कैसा लगता है? एकदम शांत, गहरी शांति, शांति अंदर में लगती है ना, फील होती है, महसूस होती है कि यहां तो बहुत शांति है। तो परमधाम तो ऐसा है कि जहां निर्वाण धाम जिसको कहते हैं, जहां वाणी कभी चली नहीं है, शब्द कभी उच्चारण हुआ ही नहीं है, वो स्थान है। और हम और जहां आकार नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, मूल, हम अपने मूल स्वरूप में। मूल स्वरूप कौन सा है? मूल स्वरूप कौन सा है? पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप में हम सभी आत्माएं ये सुनहरे लाल रंग के इस तत्व के अंदर जो स्वयं प्रकाशित है, और प्रकाश में हम प्रकाश बिंदुएं हैं। क्या है? हम प्रकाश है और प्रकाश में हम सभी कौन होते हैं? प्रकाश बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, प्रकाश बिंदु। तो आप सोचिए कि वो परम धाम के अंदर और हम सभी आत्माएं स्थित है, और मेरे सामने कौन है? मेरे सामने बिंदु स्वरूप श्री बाबा है ना। तो ये इसको ज्ञान कहा जाता है, समझा? ये ज्ञान, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते, सबसे पहली बात है ज्ञान। दूसरा मनन और मंथन। ज्ञान तो हम सबको है, परंतु इसी बात को बार बार बुद्धि में लाना, इसको कहते मनन। एक बार सोच लेने से वो टिक नहीं जाता। मन को क्या आदत हो गई है? मन को भटकने की आदत हो गई है ना, मन को चारों तरफ घूमने की, भटकने की इतनी जबरदस्त आदत है, वंडरफुल है। कभी कभी वंडर लगता है अपने को कि कमाल है, कोई काम का नहीं तो ये विचार क्यों आता है ना। आप बैठेंगे योग में, चलो पानी पी के आऊं, अरे तेरे को प्यास ही नहीं लगी, पानी पीने क्यों जाता है? पर ये मन भटकने की आदत। कई लोग बैठते हैं योग में, उठ खाम खा उठ के चले जाते, क्यों भाई? बस ऐसे ही। अरे क्यों ऐसे ही भाई, तुम योग में बैठे थे? पर आदत, मन को क्या पड़ा है? भटकने की आदत। बैठे बैठे बाबा कई बार कहते हैं कि क्लास में बैठे पता नहीं कहां उसका मन भटकता है, क्योंकि बैठे बैठे आप बैठे होंगे, घर में फलाना क्या करता होगा, अब क्लास में सेंटरों में आते होंगे, अभी अभी सब्जी ये लाई हूं और ये बाकी है, भाई ऑफिस वाला होगा तो फलाने को बुलाने का बाकी, इसको फोन करना, क्या क्या हम अंदर में सोचते रहते हैं। मन को क्या है? भटकने की आदत हो गई है। तो इसलिए हमें ज्ञान होते हुए भी, ये जो ज्ञान है वो तो आप सबको है ही, परमधाम क्या है, कैसा है, हम कौन है, क्या है, हमारा मूल स्वरूप क्या है, सब पता है सबको, सबको सब पता है, ज्ञान तो है बेसिक, परंतु कमी किस बात की है? तो कहे भाई कमी मनन की, मंथन की, चिंतन की। तो इसी बात को बार 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 सोचना, मनन मंथन कोई बड़ा भारी शब्द नहीं है, मनन शब्द सहज है, यही बात को बार बार सोचना, क्या कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ब्रकुटी के बीच में विराजमान हूँ, मैं परमधाम में अभी जा रही हूँ, संकल्पों से परमधाम चाहे कैसा है, वहां बाबा है और मैं सामने हूँ, बाबा बाबा मेरे सामने है, बाबा मुझे देख रहे हैं शब्द नहीं बोला जाएगा, बाबा मुझे महसूस कर रहे हैं, मैं बाबा को महसूस कर रही हूँ, है ना, मैं हूँ और मेरे सामने बाबा है, बाबा जानते हैं कि मैं बाबा के सामने हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं बाबा के सामने हूँ, है ना। इस प्रकार की महसूसता को बार बार मन में लाने का है, जिसको कहते अभ्यास। एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है मनन, पर हम कभी कभी बहुत उमंग उल्लास में आ जाते हैं तो 5 मिनट मनन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा और आनंद आने के बाद छोड़ देंगे। एक बार एक भाई ने पूछा कि बहन योग में कभी कभी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, उड़ने लगते हैं तो फिर छूट जाता है। तो मैंने कहा यही तो बात है कि हमें ज्ञान है, हमें कभी बहुत उमंग उल्लास आ गया तो मनन मंथन चिंतन करने लग पड़ते हैं, एक दिन किया, 2 दिन किया, बस फिर छूट जाता है। तो अभ्यास उसको कहते हैं कि यही बात को बार 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 हमें करना होगा, क्योंकि ये रूहानी पुरुषार्थ है। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि बाबा ने ये कहा होता कि एक बार हिमालय की पहाड़ी चढ़ जा तो स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो इजी था, है ना। हमें कोई ये कहे कि चल करके आप यहाँ से माउंट आबू 15 बार आना जाना कर लो तो तेरी अवस्था बन जाएगी, तो बन सकती है, वो हम कर सकते हैं, है ना। 100 बार कह ले चलो 100 बार ऊपर नीचे जाओ चढ़ के तो हो सकता है, परंतु ये रूहानी पुरुषार्थ है, ये संकल्प की बात है, ये रूहानी पुरुषार्थ है और बहुत इजी है, इसलिए नहीं हो सकता है। वो मुश्किल बात हो तो हो सकता है, परंतु क्योंकि ये बहुत इजी है, आप जहां बैठे हैं वहां भी संकल्प तो कर सकते हैं, बैठे बैठे करना है, मैं आत्मा हूँ, बाबा के सन्मुख हूँ, दैट्स इट, बस, और कुछ खास तो करना ही नहीं है। तो अभ्यास, अभ्यास के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अभ्यास करने के लिए ही हमें सतत जागृति चाहिए, कॉन्स्टेंट अवेयरनेस, कॉन्स्टेंट सतत जागृति। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है जागृति के लिए, मैं हमेशा याद रखती भी हूँ और कहती भी हूँ कभी कभी। एक बार ऐसे हुआ कि एक राजा को अपने राजकुमार को पढ़ाई के लिए किसी गुरु के पास रखना था, राजा था इसलिए बहुत ढूंढा गुरुओं को कि कौन मेरे राजकुमार को अच्छे से अच्छी रीति से पढ़ाएगा, और जो गुरु आता था उसको राजा बोलता था कि भाई तुम मेरे कुमार को पढ़ाओगे तो मैं आधा राज्य तुमको दूंगा। तो बोल रहा हाँ, तो वो आधा राज्य का आप क्या करोगे, तो वो जवाब सबसे अच्छी तरह से नहीं मिलता था, तो उनको वो गुरु पसंद नहीं आता था। किसी ने कहा कि भाई हमारे राज्य के बाहर एक संत बैठे हैं, आप उनसे जाके पूछ के आओ। तो गुरु ने कहा अच्छा बुलाओ, उनको भी बुलाओ, तो बुलाने गया। गुरु ने कहा मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, जिसको पढ़ना है वो मेरे पास आएंगे, मैं किसी के पास क्यों जाऊंगा। तो कहा कि भाई आप पढ़ाएंगे इसको तो आपको आधा राज्य मिलेगा, मतलब मेरे को क्या करना, मैं तो साधु हूँ, मेरे को राज्य की जरूरत ही नहीं है। तो आखिर उसको उसके पास जाना पड़ा, राजा उसके पास जाते हैं तो बोला आप मेरे राजकुमार को पढ़ाई, बोला पढ़ाऊंगा ठीक है। आप राजा ने कहा मैं आपको आधा राज्य दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा तो अपना राज्य यही है, मुझे आपका राज्य लेके क्या करने का। तो ठीक है आप पढ़ाइए। बोला पर मेरी एक कंडीशन है। क्या? तो कहते भाई तुम्हारा राजकुमार पढ़ते पढ़ते मर जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। तो कहते मर जाएगा क्यों? बोला नहीं, एक मैं तो कह लेता हूँ पहले से। तो राजा का मन तो ऐसा हो गया, पर राजकुमार कहते मेरे को यही पढ़ने का, चैलेंजिंग जॉब चाहिए, है ना। तो राजकुमार ने कहा कि नहीं यही पढ़ूंगा। ओके, तो राजा तो उसको छोड़ के चला गया। तो थोड़े दिन हो गए, कुछ पढ़ाया ही नहीं गुरुजी ने। तो राजकुमार ने सोचा कि अभी क्या करूं, कुछ पढ़ाते ही नहीं गुरुजी, तो क्या होगा, कब पढ़े पूरी होंगी। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी आप तो मुझे कुछ पढ़ाते ही नहीं। बोला अच्छा, इच्छा होगी पढ़ने की तो शुरू करते हैं, आपने सामने से कहा तो शुरू करते। अच्छा पहला लेसन शुरू होगा। तो पहला लेसन क्या होगा? कहता है कि ये मेरे हाथ में एक लकड़ी है और मैं दिन में कभी भी तुमको मारूंगा, आपको अपने आप को बचाने का। दिस इज फर्स्ट लेसन। कहता है कि अच्छा कभी भी मारेंगे तो लग जा सकता है। तो कहते हाँ वही तो लेसन है। अच्छा ठीक है, दिन में लेसन शुरू हो गया। शुरू शुरू में तो उसको बहुत लकड़ियां पड़ने लगी, पर धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो गुरु तो कभी भी आके मारेगा, कभी भी, तो लगती थी शुरू में तो। पर बाद में वो इतना तैयार हो गया कि फिर कभी भी गुरु मारता था तो वो अपने आप को बचा सकता था। अच्छा तो फिर ये दूसरा लेसन शुरू हुआ। तो कहते हैं अच्छा अब मैं तेरे को एक लकड़ी की तलवार से मारूंगा। कहते ठीक है, परंतु क्योंकि बहुत दिनों का अभ्यास हो गया तो उसको वो लकड़ी के तलवार की घाक को भी वो चुकाने लगा, अपने आप को बचा सकता था। अच्छा फिर कहते अभी मैं तलवार से, सच्ची तलवार से मारूंगा, है ना, डेंजरस। पर तो भी बहुत दिनों का अभ्यास हो गया था इसलिए फिर वो अपने आप को बचा सकता था, वो परीक्षा में भी वो पास हो गया। फिर गुरुजी कहते अच्छा अब मैं तेरे को रात को जब सोता होगा तब मारने आऊंगा। तो कहते वो तो कैसे पता चलेगा, दिन में तो मैं जागता हूँ तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, अब रात को? तो कहता अच्छा ठीक है, उसको भेज दिया। फिर रात को गुरुजी उसके रूम में जाते हैं, रूम में जाके उसने वो राजकुमार के नाम से उसको पुकारा, वो उठा, कुछ बातचीत किया, कहते सो जाओ कल सुबह बात। अच्छा सुबह में सभी शिष्यों को बुलाया और सभी शिष्यों को पूछा कि कल मैं आपके रूम में आया था आपको पता है। तो उसके साथ और चार पांच शिष्य थे, सब लोग ना गुरुजी आप तो आए नहीं। बोला मैं आया था ना। तो कहते हमको नहीं पता है। फिर आज तुमको पता है? कहते हाँ मेरे को तो पता है ना। तो कैसे पता चला? तो आपने जो मेरा नाम पुकारा तो मैं उठ गया। तो गुरुजी कहते इसका अर्थ क्या हुआ? तू अपने नाम के प्रति नींद में भी जागृत हो, है ना। हमारा नाम कोई पुकारेगा तो क्योंकि डीप डाउन में हम अपने नाम के प्रति जागृत है इसलिए आप उठते हो, बाकी क्यों नहीं उठे, तुम ही क्यों उठे। बोला हाँ बात तो ठीक है। इसी प्रकार रात को नहीं मैं आपको मारने के लिए आऊं तो आपको इस बात की जागृति को लाना है। कहता है ठीक है। तो फिर धीरे 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 वो भी उसके अंदर जागृति आने लगी और वो पूरा पास हो गया। फिर एक बार ऐसे हुआ कि गुरुजी वही तलवार, जिस तलवार से वो घाव करता था, वो तलवार को बाजू में रख करके पौधे को पानी पिला रहा था गुरुजी खुद, और वो शीशे पीछे से आ रहा था। इसको मन में संकल्प आया कि गुरुजी मेरे को तो हमेशा मारते रहते हैं, तो आज ट्राई करूं कि ये तलवार धीरे से लेके मैं उनको मारूं, क्या करता है ये सोचा ही खाली। गुरुजी ने कहा कि शिष्य ऐसा मत सोच, बिना देखे ही बोला उनके विचारों को पढ़ के कि तुम ऐसा मत सोच, तू तो जवान है मैं तो बूढ़ा हूं। तो शिष्य को लगा कि अरे ये तो मेरे विचारों के प्रति भी जागृत है, अभी और पढ़ने का बाकी है। इसको कहते हैं अवेयरनेस, जागृति, समझा। हमारे सामने तलवार लेके कौन खड़ी है हमेशा? माया, कॉन्स्टेंट माया है, कॉन्स्टेंट माया अथवा रावण हम जो भी कहे, पर वो कॉन्स्टेंट है खाम खा, बिना कोई कारण के, बिना कोई कारण के, समझा। और हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है, बुद्धि के तार को तोड़ देती है, बाबा के साथ के हमारे बुद्धि के तार को तोड़ देती है, आप सोचिए। इसीलिए क्या है? सतत जागृति। मैं आत्मा हूं ये मेरी सतत जागृति है, बाबा के नींद में भी, है ना। आप सोचिए। तो इसको कहते हैं फिर कॉन्स्टेंट अवेयरनेस, जागृति, यही हमारी पढ़ाई का, यही हमारी पढ़ाई का, आध्यात्मिकता का अगर मूल लक्ष्य अगर हो तो यही है कि हम सतत जागृत रहे अथवा हमारी कॉन्शियसनेस रहे कि मैं आत्मा हूं और मैं बाबा के सन्मुख हूं। तो ये है अभ्यास। ये कैसे होता है? अभ्यास से, रोज 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 सुबह में, हर सुबह से लेकर रात तक कुछ कुछ भी हम करते हैं तो हमारा ध्यान इस बात में कि मैं आत्मा हूं। और कहने में डिफिकल्ट नहीं है, कहने में सहज राजयोग है, कहने में डिफिकल्ट नहीं है कि क्या जाता है अपने का ये सोचने में। हम भी बार बार कभी सोचते हैं कि कुछ नहीं करने का, अपने को आत्मा ही खाली समझने का है ना। काम सब करो, सबके साथ बात करो, व्यवहार में आओ, धंधा दौरी करो, जो करना है सो करो, परंतु क्या करो? अपने को हम मनुष्य कुछ समझ के तो करते ही है, सब कुछ करते हैं ना, परंतु आत्मा समझ के करने में हम भूल जाते हैं। तो है केवल अभ्यास की बात। तो अभ्यास एक होता है ज्ञान, एक होता है मनन, और फिर होता है अभ्यास। ये जितना कांस्टेंट हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा तो हमारी स्थिति बनती जाएगी। और चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है पुण्य कर्म। क्या है? पुण्य कर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर बाबा ने इतना बड़ा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनाया हुआ है सेवा का, नहीं तो बाबा को सतयुग लाने में कोई इतनी देरी की बात नहीं थी। भगवान आके हमें एक बार कह ले आके कि अपने आप को आत्मा समझ लीजिए सभी, हम कहे ओके बाबा जी बाबा, और मेरे साथ मन का योग लगा लीजिए, लगा दिया, तुम पवित्र बन गए, चलो सतयुग में। एक दिन लगता था, कितना टाइम लगेगा? जब भगवान स्वयं कहे, हम कहे बाबा में पवित्र बनना है, बाबा की तथास्तु, बन गए पवित्र, बस क्या पुरुषार्थ? नहीं, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि मन, मन जो है वो जन्मों जन्म से आत्मा के अंदर जो संस्कार पड़ गए हैं, आत्मा ने जो इतने जन्मों में कर्म किए हुए हैं, तो जैसे बाबा अभी हमें कहते हैं, हमेशा हम सेवा में आते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, सेवा का फल और सेवा का बल, कहते हैं ना, दो बातें सेवा से मिलती है, क्या मिलती है? सेवा का फल और सेवा का बल मिलता है। फल तो मिलेगा कर्म के हिसाब से, और बल क्या मिलता है? बल क्या मिलता है? आत्मा को श्रीमत पर चलने का बल मिलता है। क्या मिलता है? आत्मा को बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने का बल मिलता है। अभी सेवा का फल और बल, उसी प्रकार जन्मों जन्म के जो कर्म हुए हैं उसका हिसाब किताब बनता है। एक बनता है कर्मों का हिसाब किताब, जो कर्म किया वो फल मुझे जरूर पाना है, एक है कर्मों का हिसाब किताब। दूसरा, जैसे बल मिलता है वैसे आत्मा निर्बल बनती जाती है, दो बातें होता है, एक कर्म करती जाती है पाप कर्म देह भान के वश, वो कर्मों का हिसाब किताब, और दूसरा आत्मा क्या बनती है? धीरे धीरे निर्बल बनती है, कमजोर बनती है, समझा? हमारी समझ बेसमझी में परिवर्तित हो जाती है, वो आत्मा के साथ लगा हुआ है, इसलिए धीरे 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 हमें, हम पुण्य कर्म करना भूल जाते हैं, और ऑटोमेटिकली क्या बनता जाता है? पाप कर्म करते जाते हैं। पाप शब्द दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ा शब्द कहते हैं, परंतु पाप कर्म उसको कहा जाता है वास्तव में। वैसे कहते पाप कर्मों से हमें दुख मिलता है, पर दुख भी अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी प्रकार का दुख जो है वो हमें बाबा से अपना बुद्धि योग जोड़ने नहीं देता। आपका अनुभव होगा कि आपको जरा सा पांव में दर्द है तो भी बुद्धि कहां जाएगी? वहां जाएगी। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, अभ्यास से यह हो सकता है, कितना भी दुख दर्द हो पर आपकी बुद्धि बाबा में लगी रहे, वो अभ्यास मांगता है। तो कई बार हमारे कर्म, पिछले किए हुए हमारे जो पाप कर्म है, वो हमें बाबा को निरंतर याद नहीं करने देते हैं। याद का कोई प्रोग्राम बनेगा तो हमारा और प्रोग्राम बन जाएगा, है ना? सेंटरों में योग बच्चे का प्रोग्राम बनता है, याद का प्रोग्राम बनता है, निरंतर याद का प्रोग्राम बनता है, और हमारे कर्मों के हिसाब किताब अनुसार हमें किसी को देखने जाना है, शादी में जाना है, बर्बादी में जाना है, जाना है। और गर्भ रस में रहने वालों को तो जाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो जो भी हमारे हिसाब किताब है कर्मों का, वो जब तक पुण्य कर्म में टोटल ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारा निरंतर याद करना संभव नहीं होता है। हमें कम से कम अपनी स्थिति को, हमारी आजू बाजू की परिस्थिति को ऐसा जरूर बनाना होगा जो लोग जान जाए कि ये भगवान का हो चुका है ना? हम भगवान के हो चुके हैं, सभी हो चुके हैं ना, भगवान के हो चुके हैं सभी। हाथ ऊपर करें जो भगवान के हो चुके हैं। बहुत बहुत अभिनंदन की बात है कि हम भगवान के हो चुके हैं। हमको अंदर से पता है हम भगवान के हो चुके हैं, परंतु यही बात क्या होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ये भगवान का हो चुका, सबको पता चले ये भगवान का हो चुका। अगर हम भगवान के हो चुके हैं तो क्या होगा, भगवान का हो चुके मतलब क्या हुआ, ये मर गया इस दुनिया से, और मरे हुए कोई नाम लेगा, हमें कोई बुलाएगा? हमारे से लोग सभी आशा अपेक्षा छोड़ दे कि हमको बुलाएं, हमारे सामने देख करके हंसे, हमें मदद करे, हमारा तो नाम निशान मिटा दो तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी स्मृति से। ऐसा किसी को लगे कि भाई इनका नाम छोड़ो, ये तो हो चुका, ये तो भगवान का बन चुका, किसी भी माया से अपने आप को बचा सकते हैं। एक बहुत छोटा सा जोक जैसा है पर सीखने जैसी बात है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ अपनी दुकान से बहुत ज्यादा सोना चांदी हीरा लेकर के एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। ये किसी चोर लोगों को पता चल गया कि ये बंदा कुछ लेके ही जा रहा है, तो इसके पीछे पड़ गए। वो सेठ को भी पता चला कि ये तो अभी पीछे पड़ गए, क्या करूं, कैसे, ये तो चार पांच लोग थे हथियार के साथ, वो अकेला क्या करेगा। तो उसने बुद्धि लगाई, क्या किया, बीच में स्मशान आता था, फटाफट स्मशान में चला गया और एक कब्र के नीचे सब सामान रख दिया, कब्र के ऊपर जाके बैठ गया। आए चोर पीछे, तुम कौन हो? बोलते कुछ नहीं, कब्र में था, गर्मी लगी अंदर तो बाहर के बैठा हूं। चोर तो वो भागे की बात मत पूछो। अब देखिए जो मर गया है उसके आगे कौन टिकेगा। तो कैसी भी माया होगी, है ना, मरे हुए के आगे कुछ भी टिकता नहीं है, समझा? तो इसीलिए अपने आप के साथ पक्का कर लेना है कि मैं बाबा का हो चुका हूं। पर ये हो चुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुण्य कर्म जमा करना पड़ेगा। जितना आपका पुण्य कर्म जमा होगा उतना आपकी परिस्थिति धीरे 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 बदली होती जाएगी। जो बाबा भी हमें कहते हैं कि आप चेक करो कि आप पतित से पावन बन रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी चेकिंग क्या है, निशानी क्या है? तो निशानी यही है, जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं तो हम अकेले ज्ञान में आते हैं, इसलिए हर परिस्थिति हमारी प्रतिकूल होती है, प्रतिकूल। घर से आने नहीं देंगे, धारणा करने नहीं देंगे, भोजन की धारणा रखने नहीं देंगे, अनेक लोग सलाह देंगे क्यों जाते हो भाई क्यों, ऐसा सब लोग बोलते रहेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति। धीरे 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 क्या होगा, जितना हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, जितना आत्मा सतो प्रधानता की ओर आगे बढ़ती जाएगी, हमारी परिस्थिति अनुकूल होती जाएगी। अनुकूल परिस्थिति, स्थूल परिस्थिति अनुकूल होती जाएगी। अब जब स्थूल परिस्थिति अनुकूल हो जाती है तो कोई भी पुरुषार्थ करना सहज सहज हो सकता है। जितना हमारी अभी हमें कोई आने से रोकता नहीं और ये हमें हेल्प करते कि जाओ जाओ जाओ, आप सबका अनुभव है ना। शुरू में जिनको बंधन होता था वो आज उनके घर वाले उतना टाइम हो गया, जाओ भाई जाना नहीं, आप देरी से उठेंगे तो वो अरे आज तेरे को अमृत वेला नहीं करना कहेंगे ना, कोई भी मदद करेगा। तो हमारी परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में जितनी ट्रांसफर होती जा रही है, आप समझिए कि हमारी स्थिति आगे बढ़ती जा रही है। और इसका आधार जैसे आपको कहा कि पुण्य कर्म, और बाबा कहते पुण्य कर्म अर्थात क्या, कर्म तो करना ही है सुबह से रात तक। आप घर गृहस्थ में रहते हैं, अनेक लोगों के साथ रहते हैं आप, है ना, तो अभी फट से अपना कर्मों का हिसाब किताब चुक तो कर दीजिए ऑन द स्पॉट, हो सकता है ऑन द स्पॉट शुरू कर सकते हैं, समझा, ऑन द स्पॉट चुक तो करने का एक ही विचार है, आप हिसाब किताब अपनी तरफ से पूरा कर लो। क्या विचार है कि हमें किसी से कुछ लेना नहीं, न स्थूल न सूक्ष्म, न स्थूल न सूक्ष्म। आपको जिसके पास कुछ न कुछ अगर आपका है कि आपको लेना है, वो क्या करो, छोड़ दो, भूल जाओ, बस छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए। बाबा क्या कहते, मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए। तो वो 50% कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया, चाहिए नहीं, छोड़ो, स्थूल। उसी प्रकार सूक्ष्म भी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जैसे दो चार दिन पहले मूल्य में था कि किसी के भी प्रशंसा के भी अधीन नहीं रहो, हमारी मन की स्थिति किसी की प्रशंसा के अधीन ना हो तो आप स्वतंत्र है। अगर आपको किसी की प्रशंसा के आप अधीन है तो आप परतंत्र है, और परतंत्र व्यक्ति बाबा की याद में नहीं टिक सकता है। आपको विचार आएगा कि देखो मैंने इतना किया, मेरा क्या, किसी ने बोला भी नहीं कुछ, संकल्प ही आएगा। अब आप इससे मुक्त है कि किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो ये संकल्प करेंगे तो आपके हिसाब किताब चुक दो। इवन गृहस्थ में रहने पर भी, गृहस्थ में तो ऐसा बहुत होता है, सालों साल से ज्ञान में चलने वाली माताएं बोलेगी मेरे को मेरे बेटे ने बुलाया नहीं, अरे बहुत अच्छा नहीं बुलाया, तो खुश रहो आबाद रहो, क्यों बुलावे, बोलो अच्छा हुआ, अच्छा तुम्हें नहीं बुलाया बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो परंतु मन मानता नहीं ना, नष्ट मोहा हम बनते नहीं है, मन मानता नहीं है। इसलिए हमें अगर अपना हिसाब किताब चुक तो करना है तो अपनी तरफ से सबको मुक्त कर दो। कोई बोले कि हमें आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बोले नहीं मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना ध्यान अपने आप रख सकते हैं, डोंट वरी डोंट वरी। कोई हमें कुछ रखने का कोशिश करे, कोई बुलाने की कोशिश करे, कोई कुछ देने की कोशिश करे, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे कहते जिसको कुछ न चाहिए वो शाहों का शाह। तो हिसाब किताब चुक तो करने की पहली बात यह है कि किसी से कुछ नहीं चाहिए, न स्थूल चाहिए न सूक्ष्म चाहिए, हिसाब किताब चुक तो, और बाकी का 50% है वो देते जाओ। कुछ न लेने की भावना से आप जो भी देते जाएंगे वो पुण्य कर्म बनता जाएगा। बाबा की याद में किसी को भी कुछ देने की भावना रख करके, बिना अहंकार के, निर्विकारी बन करके हम जो भी करते हैं वो क्या बनता जाएगा, पुण्य कर्म। छोटा सा कार्य है झाड़ू लगाने का, बाबा की याद में और प्यार से लगाओ। भोजन बनाते हो, बाबा की निरंतर याद से और प्यार से बनाओ। आप ऑफिस में काम करते हो, बड़े प्यार से काम करो, बाबा की याद में करो। ज्यादा कार्य कर सकते हैं और मन की शांति से कर सकते हैं, वो हर कार्य आपके मन को, मन की क्षमता को बढ़ाता है। हर कार्य आपकी मन की क्षमता को बढ़ाता है। और मन की क्षमता किसको कहा जाता है कि एक जगह टिके रहने में ही मन की क्षमता है। मन को एक जगह आप कितना समय तक टिका सकते हो उसको ही मन की क्षमता कहा जाता है ना। तो इसीलिए हम जितना जितना ज्ञान को स्पष्ट समझते जाएंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, अपने पुण्य के खाते को बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारा मन शक्तिशाली बनेगा और स्थिर बनता जाएगा, है ना। तो वो आनंद जिसको बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख का आनंद किसको मिलता है, जिनका मन स्थिर हो सकता है, जिनका मन बाबा में स्थिर होता है। आप सोचिए, ऑटोमेटिकली बाबा के शक्ति आत्मा के अंदर आती जाती है और वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आत्मा को होता है। और अगेन जिसको कहते, जितना आपको अनुभव होगा उतना आत्मा शक्तिशाली बनती है, उतना योग ज्यादा अच्छा लगने लगता है और आत्मा धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है। तो संगम योग की जो प्राप्ति है, संगम युग की जो प्राप्ति है, खाना पीना तो ठीक बात है, वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है ना, पहनना ओढ़ना भी ब्रह्मा कुमार कुमारी को बहुत अच्छा मिल जाता है, सबका अनुभव है। पर जो संगम युग की प्राप्ति कौन सी है, अतीन्द्रिय सुख की, प्रभु मिलन की। प्रभु मिलन में जो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो केवल एंड केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी को, ब्राह्मणों को, बाबा के बच्चों को ही मिलता है। बाकी किसी को पता ही नहीं है कि शांति चीज क्या होती है, सुख क्या होता है, किसी को पता ही नहीं है। तो ये संगम युग की प्राप्ति है। ये प्राप्ति नहीं किया तो हमने मिस कर दिया संगम युग में। तो इसीलिए हम सभी को सब कुछ करते हुए, करना तो हमें भी सब कुछ है, तो दुनिया वाले करते वही हमको सब कुछ खाना है, तो खाना बनाना भी पड़ेगा भाई, आपको कमाना भी पड़ेगा, खा लिया तो सफाई भी करनी ही पड़ेगी, कपड़े अच्छे अच्छे सफेद पहनते हो तो धुलाई करना ही पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ता है, हमें भी सब कुछ करना पड़ता है, करते हैं सब कुछ करते हैं, परंतु वो करते हुए हमारी जो सबसे बड़ी बात है वो हमारे मन का जो सुख है, हमारे मन को जो गहरी शांति का अनुभव हुआ है। दुनिया में कुछ भी होता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है फर्क, कोई नहीं पड़ता है ना। जिसको बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलू का शिकार, तैयारी भी करनी है, कुछ भी हो जाएगा दुनिया में, पर तुम बच्चों की स्थिति, मन की स्थिति बहुत अच्छी, निरंतर याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगी, तभी तो आप सुख की दुनिया ला सकेंगे। तो इसीलिए मैं समझती हूँ ये हमारे संगम युग की खास विशेष प्राप्ति है। आप हम सभी मधुबन में आए हैं, मधुबन के कण कण में ऐसी ताकत है जो मन को सक्षम बना सकता है, परंतु हम जागृत रहेंगे तो आपसी बातों में, यहाँ वहाँ के सोच में अगर ये समय को व्यर्थ कर दिया तो प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे, है ना। कोई एकदम सागर के किनारे जाए और कहे कि मेरे को तो ठंडी हवा का पता ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा तो गर्मी अंदर से हो जाती है ना, ऐसा नहीं। पर हम अगर सागर के किनारे आए हैं तो सभी व्यर्थ से मुक्त होकर के बाबा के अनुभव का खजाना अंदर में आत्मा भर करके जावे, ऐसा भर करके जाए जो वहां जाकर सबको बांट सके, शेयर कर सके, समझा। ओम शांति।